विजुअल बेसिक डॉट नेट के आईडी पर थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं आज। आईडी यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर हायर लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में बनाने, विकसित करने के लिए जो जो टूल्स चाहिए होते हैं, जो जो आवश्यकताएं चाहिए होती है, उन सब को इंटीग्रेट कर एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है। इस एनवायरनमेंट के अंदर कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एडिटर चाहिए होगा, जिसके माध्यम से हम सोर्स कोड को बनाएंगे। तो एडिटर इसमें होता है जिसमें हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, और उस एडिटर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी शक्तिशाली विधाएं हैं। जैसे उसमें एक चीज़ है, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। एडिटर के अंदर जब आप कोई चीज़ को टाइप करते हो, तो कोई भी शब्द को टाइप करते वक्त जैसे ही आप पहला लेटर टाइप करते हो, उस लेटर से शुरू होने वाले सारे नाम, सारे कीवर्ड्स या सारे क्लासेस या सारे क्लास की मेथड्स, वो सब की सब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में आपको दिखाई दे जाती है। उनमें से आप चूज कर सकते हो ताकि आपका टाइपिंग का समय बचे। जो एडिटर होता है सोर्स कोड लिखने के लिए, वो सोर्स कोड की उस पर्टिकुलर मेथड का या प्रोसीजर का फॉर्मेट, उसका हेडर फूटर बना बनाया आपको देता है। इंटेलिजेंट एडिटर होता है जिसमें स्पेल चेक होती है, जो अपने आप कुछ एडिटिंग फीचर्स भी करता है, यानी कि अलग अलग कीवर्ड्स को अलग रंग, नीले रंग में जैसे कीवर्ड्स को दे दिया। तो इन सब को सेट करके आपके आईडी में एक शक्तिशाली कंपोनेंट है एडिटर। दूसरा है कंपाइलर। अब जो कंपाइलर यहाँ पर है VB.NET में, ये जैसा हमने पिछले बार बात की थी, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और इंटरमीडिएट लैंग्वेज से फिर लाइब्रेरीज को लिंक होता है। तो लाइब्रेरी है जहाँ हजारों क्लासेस है, फंक्शंस है, प्रोसीजर्स है, जो बने बनाए रखे हुए हैं फ्रेमवर्क के रूप में। तो आईडी में ये लाइब्रेरी आती है, लिंकिंग आती है। इन लाइब्रेरी के अंदर ऑन द शेल्फ बने बनाए बहुत सारे क्लासेस है। आप भी अपनी क्लासेस बनाकर लाइब्रेरी के रूप में विकसित करके इस लाइब्रेरी के साथ जोड़ सकते हो, सेल कर सकते हो, या फ्री यूज करने के लिए लोगों को दे सकते हो, सोर्स कोड के साथ या लाइब्रेरी के फॉर्म में। तो ये जो फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर है, इसके कारण से यह एनवायरनमेंट बहुत शक्तिशाली बन गया है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, उनका साइज बहुत छोटा हो जाता है। यदि आप कंपेयर करें, जैसे मान लीजिए सी से कंपेयर कर लीजिए, तो आपने कोई प्रोजेक्ट सी में डेवलप अगर किया, तो उसको जब कंपाइल करते हैं, तो पूरा सोर्स कोड पूरा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, जिसमें लाइब्रेरी की रूटीन्स भी आ जाती है, फंक्शन कॉल्स भी आ जाते हैं, सब कुछ एग्जीक्यूटेबल यानी कि बाइनरी रूप में, यानी कि 01 के रूप में उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर उपलब्ध होता है। यह तो हुआ प्रोसीजरल लैंग्वेज, जैसे सी था, टर्बो सी है, या और भी कोई डायलेक्ट्स उसके देख ले, वहाँ पर ऐसा होता था। लेकिन .NET फ्रेमवर्क ने क्या किया, इसने हजारों क्लासेस, फंक्शंस, मेथड्स, प्रोसीजर्स, इनकी लाइब्रेरी बनाकर एक फ्रेमवर्क के रूप में उपलब्ध करा दी है। और यह फ्रेमवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोडेबल उपलब्ध होता है, जो कोई भी यूजर जो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करने वाला है, फ्रीली बिना किसी भुगतान के आधिकारिक रूप से डाउनलोड कर सकता है। तो ऐसा होने की वजह से इस स्ट्रक्चर में, इस फ्रेमवर्क में बहुत सारा सोर्स कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर इंक्लूड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जिसके कारण से एग्जीक्यूटेबल फाइल का साइज बहुत छोटा हो जाता है। वहां पर सिर्फ कॉल्स होती है, जो कि किसी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो क्लास है वो फ्रेमवर्क में है। तो आईडी में ये फ्रेमवर्क भी आता है, और आईडी के अलावा भी फ्रेमवर्क फ्रीली डाउनलोडेबल अवेलेबल उपलब्ध होता है। अगली चीज जो आईडी में बहुत शक्तिशाली है कंपाइलर के बाद, फ्रेमवर्क के बाद, वह है एक शक्तिशाली डीबगर। मेन मेनू में ऊपर आप डीबग नाम का एक ऑप्शन दिखता है, यदि वहां जाए तो वहां से आप एक डीबग करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। डीबग का क्या अर्थ है? डीबग का मतलब गलतियों को ढूंढना। लेकिन कौन सी गलती को? गलतियां तो कई प्रकार की होती है कंप्यूटर प्रोग्राम में। कुछ गलतियों के लिए ही डीबगर लगता है, वो गलतियां है लॉजिकल एरर्स एवं रन टाइम एरर्स। इनसे आसान जो गलतियां होती है उनको कहते हैं सिंटेक्स एरर्स, जो कि लैंग्वेज की ग्रामेटिकल गलतियों के कारण से कंपाइलर समझ नहीं पाता, तो सिंटेक्स एरर्स इंडिकेट करता है जब हम कंपाइल करते हैं, तो वो भी एक डिबगर का हिस्सा कहा जा सकता है। लेकिन कंपाइलेशन एरर्स, सिंटेक्स एरर्स कंपाइलेशन के वक्त ही दिखाई दे जाती है। तत्पश्चात दो एरर्स बच सकती है, लॉजिकल एरर्स, यानी कि सिंटेक्स तो सही है लेकिन प्रोग्राम का लॉजिक सही नहीं है, या रन टाइम एरर्स, जैसे कि वेरिएबल मिसमैच हो गया, जैसे कि जो डेटा दिया वो मिसमैच हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। ऐसी एरर्स को लोकेट करने के लिए मुख्यतः लॉजिकल एरर्स, जो कि अदरवाइज बड़ी मुश्किल होती है ढूंढने के लिए, उनको डीबगर के माध्यम से सहजता से ढूंढा जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये भी नहीं कि सिर्फ डीबगर का काम एरर्स को ढूंढना है, प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ाना, उसको ज़्यादा गतिशील बनाना, उसका साइज छोटा करना, यानी कि एक बेहतर प्रोग्राम का विकास करने के लिए डीबगर एक शक्तिशाली यूटिलिटी है जो आईडीई के अंदर उपलब्ध होती है। हेल्प अपने आप में ये भी एक शक्तिशाली फीचर है, जो कि इंटेलिजेंट हेल्प के रूप में भी उपलब्ध है। एक तो मेनू ड्रिवन हेल्प है, जो मेनू के अंदर आखिरी के ऑप्शन में जब आप हेल्प को क्लिक करते हो तो ड्रॉप डाउन में आपको हेल्प के कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं, कोई काम कैसे करना, सर्च करना, या कंटेंट्स या इंडेक्स के रूप में। उसके बाद एक डायनामिक हेल्प जो है वो एक शक्तिशाली विधा है जो इसके अंदर उपस्थित है। डायनामिक हेल्प Ctrl+Alt+F4, Ctrl+Alt और F4 यदि एक साथ दबाया जाए तो डायनामिक हेल्प की विंडो खुलती है, जो कि कर्सर जहां होता है उससे संबंधित हेल्प को ओपन करके देती है, और उसके माध्यम से आप सिस्टम से बहुत फास्ट अटेंडेंस असिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो अब पुनः अगर हम आते हैं आईडी के ऊपर के मेन मेनू पर, तो फाइल है, एडिट है, व्यू है, ये सब, उसके बाद प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट में अलग अलग विंडोज ऐड करना, यूजर कंट्रोल, कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, क्लास ऐड करना, डिलीट करना, या उनके लिए रेफरेंसेस जोड़ना, वेब के रेफरेंसेस जोड़ना, ये सब किसी भी प्रोजेक्ट में संभव होता है। एक प्रोजेक्ट में आप अलग अलग मॉड्यूल्स अलग अलग भाषाओं में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं। बिल्ड, बिल्ड के अंदर उस पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाता है या रीबिल्ड किया जाता है, जिसके माध्यम से पूरा कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, वो सब करके आपको उसका फाइनल वर्शन मिल सकता है। डीबग हमने बात की, इसमें जो ऑप्शंस है उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को रन करना, यानी कि एक स्टेप रन करके फिर रोकना, वेरिएबल्स को चेक करना या मॉडिफाई करना और पुनः आगे बढ़ना, ऐसी फैसिलिटीज, शक्तिशाली फैसिलिटीज उपलब्ध है। इसमें टॉगल ब्रेक पॉइंट एक शक्तिशाली विधा है, जिसमें आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, अलग अलग तलों पर, अलग अलग स्टेटमेंट्स में स्पीड ब्रेकर या ब्रेक पॉइंट को जोड़ सकते हैं। जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर होता है, जहाँ पर सारी व्हीकल्स को अपनी गति कम करनी पड़ती है, वैसा ही यहाँ पर ब्रेक पॉइंट जोड़ करके हम प्रोग्राम को शून्य गति यानी कि बिल्कुल रोक देना और वहां वेरिएबल्स को चेक करना ये काम कर सकते हैं। प्रारंभिक प्रोग्रामिंग में आप संभवतः इनका प्रयोग न सीख पाए, लेकिन थोड़े से बड़े प्रोग्राम जब आप विकसित कर लेंगे तो निश्चित ही ब्रेक पॉइंट और डीबग एक बहुत शक्तिशाली विधा है जो आपके प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने के काम में आएगा। आईडी में अगली इंपॉर्टेंट चीज है डेटा ऑप्शन, दैट इज डेटा सोर्स एड न्यू डेटा सोर्स। डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए इनका प्रयोग होता है। विजुअल बेसिक डॉट नेट फ्रंट एंड एनवायरनमेंट कहलाता है, यानी कि यूजर इंटरफेस और फ्रंट में जैसे कि दिखाई देते हैं फॉर्म स्क्रीन्स, वह मैनेजमेंट वीबी डॉट नेट करता है। लेकिन डेटाबेस को हैंडल करने के लिए वीबी में अपने आप में कोई शक्ति नहीं है, वह यह जानबूझकर बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार के डेटाबेस को इसके साथ लिंक किया जा सके, प्रोग्राम की रीच उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया जो कि बहुत कारगर साबित हुआ है। आईडी में अगला ऑप्शन मेनू में है टूल्स, जहाँ की सर्वर कनेक्ट को डेटाबेस करना, सर्वर को कनेक्ट करना, मैक्रोज डिफाइन करना, जहाँ की बहुत सारी कमांड्स एक सिंगल कमांड के माध्यम से रन की जा सकती है, एक्टिव एक्स कंट्रोल को बनाना और कई सारी ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध है। विंडोज़ है अगला ऑप्शन, जिसमें एक बार में मल्टीपल विंडोज़ को आप हैंडल कर सकते हैं। कम्युनिटी अगला ऑप्शन है, जिसमें कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड हेल्प इन जनरल कम्युनिटी से इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमने देखा। हम जब प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो हमने पिछली डिस्कशन में विंडोज़ एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें कि हमने एक लेबल बॉक्स के माध्यम से डिस्प्ले किया था मैसेज, वेलकम का मैसेज, टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से इनपुट लिया था यूज़र के द्वारा रन टाइम पे, और एंड कमांड बटन के माध्यम से प्रोग्राम को ख़त्म किया था। दूसरे प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो बनाए जा सकते हैं उनमें मुख्यतः वेब एप्लीकेशन है, जिसके अंतर्गत आप वेबसाइट विकसित कर सकते हैं जो कि आपका उद्देश्य पूर्ण करने का कार्य करे। कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसमें कि डॉस विंडो पर डॉस पर रन करने के लिए एप्लीकेशन आप विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन के लिए भी आप प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। तो हमने आईडी के जो और अलग अलग पार्ट्स देखे उनमें मेन्यू बार भी आता है, जो कि सबसे ऊपर जो मेनू की लिस्ट है फाइल एडिट वगैरह जहां दिखाई दे रहे हैं वहां होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार आता है। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आपको अलग अलग जो ज़्यादातर उपयोग में आने वाली जो कंट्रोल्स है मेन मेनू के उनके शॉर्टकट कीज दी हुई है, वो इसके अंतर्गत आती है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, जिसमें कि हम सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करने के लिए देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज विंडो है, सर्वर एक्सप्लोरर है, टूल बॉक्स है। तो ये सारी चीज़ें भी आईडी का हिस्सा वीबी डॉट नेट में है। हमने अपने पहले प्रोग्राम में फॉर्म डिज़ाइनर का प्रयोग करके देखा है, जिसमें कि हम फॉर्म पर अलग अलग कंट्रोल्स को पेस्ट करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके उन पर सोर्स कोड अटैच करके प्रोजेक्ट को बनाते हैं। कोड एडिटर यह एक ऐसी विंडो है जहां पर हम टेक्स्ट में सोर्स कोड को डेवलप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको छोटा किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है। उसके लेफ्ट साइड में जहाँ पर कोड विंडो होती है, लेफ्ट साइड में एक वर्टिकल लाइन होती है जहाँ पर कि माइनस का साइन अगर हो तो उसका मतलब है कि आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, और प्लस का साइन हो तो उसका मतलब उसको आप और एक्सपांड कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से सोर्स कोड को जिस हिस्से को आपको पढ़ना है या काम करना है उसको एक्सपांड कर पे करके उस पे कार्य कर सकते हैं। तो कोड पैन है, उसमें इंडिकेटर मार्जिन है जिसको कि आप छोटा या बड़ा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सिलेक्शन मार्जिन यह वो कॉलम है जो इंडिकेटर मार्जिन और एडिटिंग पिक्चर के बीच में होता है। कोड में बदलाव यहाँ पर ट्रैक होता है। इसके बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रोल बार्स होते हैं, आड़े और खड़े स्क्रोल बार्स। तो यहाँ एडिटर हुआ। प्रॉपर्टीज विंडो का हम एक बार प्रयोग कर चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज विंडो का उपयोग मूलतः चयनित ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और इवेंट डिजाइन टाइम को देखने या बदलने के लिए कर सकते हैं। फाइल, प्रोजेक्ट, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी को संपादित करने में यह कार्य करता है। कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज कॉमन होती है जो कई सारे टूल्स में होती है, ऑब्जेक्ट्स में होती है, जैसे ऑब्जेक्ट नेम। यह ऑब्जेक्ट का नाम होता है जो कि कोड एडिटर या फॉर्म डिजाइनर के ऑब्जेक्ट्स का दृश्यमान रूप होता है। कैटेगराइज्ड, चयनित ऑब्जेक्ट के सभी प्रॉपर्टी तथा उनके मान को कैटेगरी से सूचीबद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। किसी कैटेगरी को प्लस साइन से आप एक्सपांड कर सकते हैं या माइनस साइन से उसको संकुचित कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर अल्फाबेटिक यदि चूज कर दिया जाए तो सारी प्रॉपर्टीज सॉर्टेड ऑर्डर में आती है। एक और इम्पोर्टेंट विंडो जो इवेंट्स को दर्शाती है, जो कि कोड एडिटर के अंदर एक लिस्ट बॉक्स के रूप में दर्शित होती है। डिस्क्रिप्शन पैन जो है प्रॉपर्टी के टाइप तथा उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्रकट करता है। इसके माध्यम से आप किसी भी टूल का, किसी भी प्रॉपर्टी का जब F4 दबा के उसको खोलते हैं तो उसके ऊपर जब किसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस प्रॉपर्टी से संबंधित उसका डिस्क्रिप्शन सबसे नीचे के हिस्से में प्रदर्शित होता है। हो सकता है आपके स्क्रीन पर सबसे नीचे का हिस्सा कोलैप्स्ड रूप में हो, संकुचित रूप में हो, तो उसको एलोंगेट करेंगे आप उस हिस्से को तो वहां पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन पैन में उस प्रॉपर्टी की हेल्प कि वह प्रॉपर्टी क्या करने वाली है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या कार्य प्रणाली है, यह दर्शाने के कार्य में आने वाला है। राइट, चलिए टूल बॉक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। टूल बॉक्स जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाला IDE का इम्पोर्टेंट भाग है। इसमें कई टैब्स है, ऑल विंडो फॉर्म्स या कॉमन कंट्रोल्स या कंटेनर्स, मेनूज एंड टूल बार्स, डेटा कंपोनेंट्स, प्रिंटिंग डायलॉग्स, क्रिस्टल रिपोर्ट्स या जनरल। प्रत्येक टैब के अंदर उस उद्देश्य से संबंधित कंट्रोल्स और कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें से जो ज्यादातर उपयोग में आते हैं वो ऑल विंडोज फॉर्म्स में प्रायः आपकी आवश्यकता के हिसाब से मिल जाते हैं, कॉमन कंट्रोल्स के टैब के अंदर भी। IDE का अगला हिस्सा ऑब्जेक्ट ब्राउजर के रूप में हम देखते हैं। जहाँ आपने फॉर्म का नाम देखा उसी टैब के अंदर अंतिम में ऑब्जेक्ट ब्राउजर दिखाई देगा। यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो आप व्यू में जाकर ऑब्जेक्ट ब्राउजर को चूज कर सकते हैं या F2 की दबा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ब्राउजर के अंतर्गत प्रोजेक्ट के उपयोग के लिए अलग-अलग संकेतों का चयन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ब्राउजर में तीन पैन होते हैं। पहला जो पैन बाई ओर है, और दूसरा दाहिनी ओर ऊपर होता है, और तीसरा दाहिनी ओर नीचे होता है। पहले वाले पैन में सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्टिंग आती है, दूसरे में उनके डिटेल्स, और तीसरे में उनसे संबंधित हेल्प यानी कि उनका डिस्क्रिप्शन। इसके अंतर्गत आप अलग-अलग संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं, नेम स्पेसेस, क्लासेस, इंटरफेस, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, एनुमरेटेड, टाइप डेफ, मेथड, इवेंट्स। ये सब संकेतों के माध्यम से उनके पहले कॉलम में दिखाया जाता है कि वह ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। एक्सेप्शन हो सकता है, मैप हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है, मैक्रो हो सकता है, ऑपरेटर, प्रॉपर्टी, फील्ड, इवेंट, कांस्टेंट, इनेम आइटम, मॉड्यूल, शॉर्टकट, इंट्रिंसिक, ऐसे अलग अलग प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, इंटरनल, इन सब के लिए अलग अलग सिंबल्स का प्रयोग होता है। और जो सबसे नीचे का पैन है, डिस्क्रिप्शन पैन, वहाँ पर उससे संबंधित पूरे डिटेल्स कि वो काय का मेंबर है, फिर वो क्या कार्य करता है, उसकी समरी सब कुछ वहाँ उपलब्ध होता है। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है उनकी कैटेगरी को भी चूज कर सकते हैं कि क्या देखना है, ऑल कंपोनेंट्स या डॉट नेट फ्रेमवर्क या मेरे माई सॉल्यूशंस या कस्टम कंपोनेंट्स। तो इसमें अलग अलग रूपों में हजारों जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है उन सब का लिस्टिंग और हेल्प यहाँ पर हम देख सकते हैं। आईडी के दाहिनी ओर जो पैन है उस पर लिखा है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। प्रोजेक्ट के अंदर के रेफरेंस, डेटा कलेक्शंस, फोल्डर्स तथा फाइल्स जिनकी आवश्यकता एप्लीकेशंस को पड़ती है, उन सब की लिस्टिंग यहाँ पर दिखाई देती है। सॉल्यूशन कंटेनर में एक से अधिक प्रोजेक्ट भी रखे जा सकते हैं, एक से अधिक फॉर्म्स हो सकते हैं। यहाँ पर वो सब कंपोनेंट सब डिस्प्ले किया जाता है। इनमें आप अपनी मनचाही फाइल को खोलकर संपादित कर सकते हैं, नई फाइल जोड़ सकते हैं तथा आइटम्स की, प्रोजेक्ट और आइटम्स की प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हैं। आईडी में नीचे की ओर एक पैन है जिस पर लिखा होता है एरर लिस्ट। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है जो अपने विकास को तेज करता है। कोड को कंपाइल तथा एडिट के दौरान होने वाली त्रुटियां या वार्निंग, चेतावनियां या मैसेजेस, संदेशों को प्रदर्शित यहां पर किया जाता है सिस्टम के द्वारा। इसके अतिरिक्त इसकी सहायता से आप सिंटेक्स त्रुटियों को भी ढूंढ सकते हैं। डिप्लॉयमेंट त्रुटियां, कुछ खास प्रकार के स्टैटिक एनालिसिस त्रुटि को भी यहीं पर डिस्प्ले किया जाता है। लाल रंग से जो प्रदर्शित होते हैं वो सिंटेक्स एरर्स होते हैं, पीले रंग से वार्निंग्स और आई के मैसेज के साथ मैसेजेस। जो जो त्रुटि आपको दिखाई दे वहां पर क्लिक करके आप एडिटर में उस स्थान पर पहुंचकर उनको करेक्ट कर सकते हैं। इस एरर लिस्ट विंडो में अलग-अलग अवयव है, कंपोनेंट्स है, कैटेगरी, डिफॉल्ट ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन, फाइल, लाइन, कॉलम और प्रोजेक्ट। इनके माध्यम से आप सहजता से एरर्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट कर सकते हैं। राइट? अगला कंपोनेंट, अगला जो अवयव है वो है आपका क्लास व्यू। क्लास व्यू के अंतर्गत रेफरेंस या कॉल किए गए संकेतों को दर्शाया जाता है। इसको खोलने के लिए आप व्यू मेनू में जाकर अदर विंडोज को क्लिक करेंगे। अदर विंडोज के अंदर जाने के बाद आप वहां पर क्लास व्यू, अभी अदर विंडो जहां आपने खोली है वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, कॉल ब्राउजर, बुकमार्क विंडो, क्लास व्यू, कोड डेफिनेशन विंडो एंड सो ऑन। इनमें से अगर आप क्लास व्यू को क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो दिखाई दे जाएगी, पैन दिखाई दे जाएगा जहाँ पर अलग अलग क्लासेस का रेफरेंस और उसका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किन किन क्लास को इंक्लूड किया गया है, वो सारे डिटेल आपको दिखाई दे जाएंगे। ऐसे ही अगर आप व्यू में अदर विंडोज में जाकर वहां पर कमांड विंडो का चयन करते हैं, तो आपको कमांड विंडो खुली हुई नीचे के साइड में दिख जाएगी। इसमें हम अलग अलग कमांड्स को रन कर सकते हैं। जैसे यदि आप लिखे डीबग डॉट प्रिंट ब्रैकेट में 2+4 ब्रैकेट क्लोज, तो आपको 2 और 4 का एडिशन जो है वो कमांड के रूप में लेकर के उसका डिस्प्ले दिखाई देगा। इसी तरह और भी कुछ ऑप्शंस है, इंटरमीडिएट विंडो है जो कि प्रोग्राम वेरिएबल को हम बीच में एप्लीकेशन असिस्टेंट के माध्यम से बीच में उसको इंटरमीडिएट रूप में मालूम कर सकते हैं। आउटपुट विंडो है जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कई फीचर्स को स्टेटस का डिस्प्ले करने के काम में आती है। टास्क लिस्ट है जहां पर कि प्रोग्रामिंग कार्यों की एक सूची बना सकते हैं और उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। यूजर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की नोट्स बना सकते हैं, कमेंट्स बना सकते हैं, टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो आईडी है ये बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा एक विशाल एनवायरनमेंट है जिसका उपयोग करके हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट VB.NET के माध्यम से सहजता से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के विकास के लिए यह अपने आप में परिपूर्ण शक्तिशाली विधा है। तो विजुअल बेसिक के माध्यम से शक्तिशाली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए आप बहुत सहजता से स्टेप बाय स्टेप कार्य कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को, एक कागज पर बड़े से प्रोजेक्ट को या सोर्स कोड को डेवलप कर लेना आसान होता है, लेकिन यदि आपको एक अच्छे प्रोग्रामर बनना है तो बेहतर होगा कि आप उस बड़े प्रोजेक्ट को कई हिस्सों में विभाजित करके स्टेप बाय स्टेप डेवलप करें। सबसे पहले जैसे हमने पिछली क्लास में एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिखा जिसको भी हमने 3 वर्जन में हमने डेवलप किया। अब जब आप थोड़े से प्रोफिशिएंट होते जाए तो आपके पहले वर्जन की जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो उसके पहले वर्जन की लंबाई, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक बार में ही बना ले। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं और उस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की त्रुटियां, सिंटेक्स एरर्स हो, लॉजिकल एरर्स हो या रन टाइम एरर्स हो, तो उनको देखकर आपको फिर करेक्ट करने में ज्यादा समय जाया करना पड़ सकता है। इनमें भी सिंटेक्स एरर्स तो आसान है, भले वो आपको बहुत ज्यादा नंबर में दिखाई दे जाए, लेकिन सिंटेक्स एरर्स को रेक्टिफाई करना, रिमूव करना, करेक्ट करना अत्यधिक सरल है क्योंकि सिस्टम आपको पूरी मदद प्रोवाइड करती है। लेकिन यदि लॉजिकल एरर्स आ जाती है तो उनको फिर बड़े फॉर्म में, एक कहने का अर्थ है कि आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ ही टाइप कर लिया और उसको फिर आप कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हो, कंपाइल हो गया है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था में एग्जैक्टली एरर कहाँ है, लॉजिकल एरर कहाँ है, इसको ढूंढने में आपको अत्यधिक श्रम करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप उसका वर्जन 1 ऐसा बनाइए जिसकी फंक्शनैलिटी कम हो, जिसपे कम कॉम्प्लिकेशंस हो, प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो, उसको रन कर ले, फिर उसी को सेव कर लीजिए वर्जन 2 के नाम से। और वर्जन 2 को अगर आपने सक्सेसफुली रन कर लिया, उसके बाद वर्जन 3, इस तरह से आप अपने वांछित गोल तक पहुंच जाए।